చక్షురుమిళితం తస్మై శ్రీగురవే వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాశ్చైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో మహాపదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నమ్నే గౌరవే గురవే గౌరచంద్రాయ రాధాయ కల్ కృష్ణ కా జన్మ హువా और आज उनकी बधाइयां थी। दोपहर में नंद बाबा ने हजारों लोगों को प्रसाद दिया और बहुत लोगों को दान दक्षिणा भी दिया, बहुत लोगों को। और कल उनके खुशी में नगर संकीर्तन निकली, कितने हजार आदमी थे और कैसा प्रोसेशन निकला, बहुत ही सुंदर। हमने ये बतलाया था कि कृष्ण ने सबसे पहले जो जन्म लिया वो दो जगहों में लिया, मथुरा में प्रकट भय और गोकुल में जन्म लिया। मथुरा में चतुर्भुज कृष्ण के रूप में आए और 16 वर्ष की अवस्था और सोने का मुकुट, शिवन छलांचन मणि और सब अलंकारों से भरे हुए थे। ऐसा लड़का जन्म नहीं लेता, लड़का जन्म लेता है तो शिव पहले निकलता है, पहले मुंड निकलता है और कंधा हुआ ऊपर पीछे से ये निकलता है और नंगा निकलता है। और ये 16 वर्ष की उम्र में किशोर अवस्था में कैसे वहां पर प्रकट हुए, जैसे खंभे से नृसिंह भगवान निकल रहे हैं। कृष्ण का जन्म नहीं है, जन्म है तो भी लीला दिखलाने के लिए आते हैं कि इन लीलाओं को सुन करके जी संसार सागर से अनायास ही पार जाएंगे, पार चले जाएंगे। इसीलिए लीला कर उतना का उन्होंने उद्धार किया, मारा नहीं। जीवात्मा मरती नहीं है, उद्धार किया उतना। वृणावर्त, सकटासुर, अगासुर, बकासुर किसी को उन्होंने मारा नहीं, शरीर बदल दिया और बदल करके अपने धाम में उनको धाम दे दिया, इसलिए उद्धार है वो। जैसे उतना को मारा और उतना को मारने के बाद में कैसे मारा, स्तनपान किया। आदमी इस शरीर से अभी बद्ध है, बधा हुआ, और कृष्ण ने उनका यह शरीर छुड़ा दिया और माता की गति दे दी। तुम्हारा कहां, एक आदमी मैला कुचाला है, पुराना कपड़ा पहना है और उसको वो हटा करके नया कपड़ा दे दिया, तो हर तैयार रहा। ऐसे ही भगवान कृष्ण का इसलिए वो मारते नहीं। कृष्ण में लीला में ये खूबी है। यीशु को मारते हैं ब्रज में तो वही बच्चे बने हुए रह करके मारते हैं। द्वारकापुरी में तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके रहते हैं और चक्र से मारते हैं। शिशुपाल को, दंत वक्र को और सबको मारते हैं। किंतु ब्रज में ऐसा नहीं, छोटे से कन्हैया लाला नंद बाबा के अभी 6 दिन की उम्र थी और पुतना का वो स्तन चूसा जो तो था नहीं 20, उनके लिए 20 क्या है, वो अमृत बन गया। और दूध के साथ साथ में उसके प्राण भी खींच लिए और उसको पवित्र करके उत्पन्न कर दिए। इसी तरह से सब अस्त्रों के संबंध में समझना चाहिए क्यों ऐसा किया। यदि साधक के हृदय में अपवित्रता होती है, कपटता होती है, भगवान नहीं मानता, ऐसी सब अनर्थ है। भगवान क्या करते हैं, किसी प्रकार से भगवान का या भक्तों का संपर्क हो गया, भगवान कपटता को दूर कर देते हैं, उसके सब दोषों को हटा देते हैं और अपनी गति देते हैं। पूतना माने पूतना, बेटा नहीं हुआ, और पूत पूत माने पवित्रता, पवित्र नहीं। पवित्रता क्या है, शरीर मन आत्मा पवित्र हो। और वो बच्चों को कच्चे चिबा जाती थी, रक्तपान करती थी, ये सब अपवित्र, बड़ी कपटी थी। तो राक्षसी आंख बड़ी बड़ी फंसी हुई, पेट एकदम वैसा, कितनी 6 मील लंबी, और वो मैया का रूप धारण किया, बड़ा सुंदर, और लाला लाला कह करके उसको गोदी में ले लिया। किसी का जो लाला लाला कहती है और स्तन पाने का, ये मैया जैसा रूप धारण किया बस माता की, ऐसे बड़े दयालु। हाउ ही इज वंडरफुल मर्सीफुल। हाउ पूतना के कोई पूतना दोज है नो सन दर पूतना पूत माने सन एंड ऑलवेज टेकिंग ब्लड एंड फ्लेश ऑफ वेरी न्यू बर्न चाइल्ड। बट ही टोल्ड कृष्ण ओ ला 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 एंड ही मेड हिज फॉर्म लाइक मदर एंड कृष्ण गेव वैकुंठ धाम मोर देन दैट मदरली हुड पोजिशन। हाउ इज मर्सी। इसी तरह से अघासुर को भी मारा। अघासुर को मार करके उसके भीतर में पेट में चले गए। केवल वही नहीं, उसके सखा लोग भी चले गए, गैया बछड़े सभी उसके अंदर में चले गए। कौन पुण्य किया था, कोई पुण्य नहीं। साधु लोग, ब्रह्मवादी लोग, योगी लोग भगवान के चरण कमलों का हृदय में ध्यान करते हैं और वो चरण नहीं आते, और साक्षात रूप से बिना ध्यान के हुए उसके पेट में चले गए। मतलब तो इसलिए परम पवित्र हो गई। और साथ ही साथ में ऐसा शरीर से सुगंध निकलने लगा मानो अगरू चंदन का ये गंध। उसको काट दिया और जलाया तो सुगंध निकला। यदि कोई भक्ति करेगा और भगवान के हृदय में धारण करेगा उसको जन्म मरण का दुख नहीं होगा, नहीं तो बहुत दुख होता है मरते समय में, बिल बिलाते रह जाएंगे, टट्टी निकल आएगी, आंख निकल आएगी, कोई देखने वाला नहीं होगा, हजार रुपया खर्च लाख रुपया खर्च करने से कोई नहीं बचाता। इसलिए बचपन से भगवान का भजन करना चाहिए। और भी इसी तरह से कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हुई इसी तरह से धेनुकासुर, पाखंडी, छली कपटी, गधे का वेश बना कर रहा था, इसलिए बलदेव जी ने उसको मार डाला। क्यों मारा? बलदेव जी गुरु है। यदि किसी शिष्य के हृदय में, भक्तों के हृदय में कपटता है, छल करता भीतर में एक बार में, और यदि वो भगवान का शरण ले, भगवान उसका सब गुरु के रूप में आकर के उसके सब कष्टों को दूर कर, कपटता को दूर कर दे। ये भगवान नहीं कर सकते, किंतु बलदेव जी गुरु में वो गुरु लोगों का ही। इसी तरह से उनकी अन्य लीलाओं को समझना चाहिए। You understood something? What? अरे कौन है? यूसुफ, यूसुफ He thought that you will not come, so I postponed Swami ji tomorrow in morning. Also come and now so much many are Hindi. So
today, well, so today the Baba is very happy and he went out and gave so much prasad donations to everyone who came, the celebration of the birth of his son. So we also followed like this today. Last night we performed a huge Nanda Sankirtan with thousands of devotees in procession. So there's two types of appearance. Here in Mathura, the Krishna Avivar had manifestation, and it's Vrindavan has Janma, like ordinary birth. So, how did he appear in Mathura? He appeared as a 16-year-old youth with four hands, golden helmet, many, many ornaments, Sankha Chakra, Dharam, Padma. So this is not an ordinary birth. When one takes birth ordinarily, the baby comes head first, then comes his feet, and he's crunched up in a ball. He has nothing, he's completely naked. But Krishna's birth here was none of that. He appeared like Nasimhadeva out of the pillar, with all types of ornaments and decorations. So we should understand that Krishna has no birth. Actually, he comes here simply to perform his different variegated leelas. Why does he come? Because by hearing of these leelas, we can easily cross over the ocean of birth and death. Putana. Who is Putana? Put means son.
अरे वैदिक
दर्शन मीन्स वन वॉज वेरी अनक्लीन। सो मेनी डेमन्स कैन लाइक पूजना तिरुमार आगसोर बागसोर एंड इट अपीयर्स दैट दे वर किल्ड बट दे वर नॉट किल्ड बिकॉज़ फॉर इन द फर्स्ट केस द आत्मा डाइज इट्स सिंपली इट्स अ मैटर ऑफ चेंजिंग बॉडी जस्ट लाइक यू कैन चेंज दैट क्लॉथ फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ टू न्यू क्लॉथ then this is only better for trust. So the same way, Krishna never kills anyone, he only changes their material body and sends them through the Goloka Dham. Putana came. After she tried to kill Krishna, she tried to kill Krishna by putting poison on her breast. So a very interesting way that Krishna killed Putana in a very natural way.
Maharaji, gir gaya tha vyakti mein, dono pairon mein chooten thi, to mujhe baat chalao. चल ही नहीं सकता, डबल गया, द्वारका जी गया, वहाँ गिर गया, दोनों कंधे टूट गए।
सो
द्वार का दर्शन
करने
वाला नहीं
बड़ौदा के स्टेशन पे और फैक्ट्री के अंदर राउंड लेते हुए गिर गए, दोनों टांगे टूट गई। मैं तो श्रीनिवास से कह रहा हूँ दो महीने बंधे रहे पैर, डेढ़
महीने
अब जा करके मैं चढ़ने लायक।
₹1,000
है, मैं तो एशिया आया हूँ, ₹1,000 है।
मधु महाराज जी आपके यहाँ प्रसाद ले जाने की कल तैयारी हुई थे,
कचौड़ी
लड्डू स्टाफ के लिए भिजवा देना। गुरुकुमार कहवाया कि मेरे पैरों में पट्टी बदी पट्टी बदी हुई है,
कोई कोई बतलाए
ये पैर और घेटू दोनों बजे हुए हैं। चल के आए पहले कंधों में ये हुआ तो
सीआर मंगा
दो, डबल एक्सीडेंट हो गया 3 महीने के अंदर। अब आप ही कृपा से
But all Krishna's friends and pals went inside his mouth and resided in his heart. So this is no ordinary thing, because even the yogis, after great endeavor, they try to remember the feet of Krishna, but it's not very impossible for them. But that same Krishna, Yagasur, he did not do any meditation. Krishna directly, personally, appeared in his body. So when these demons were killed, their bodies were chopped up. And when they are burnt, a very sweet smell emanated from their bodies. So for a non-devotee, death is very unpleasant. So much mucus, blood will come, stool, their eyes will pop out. But for a non-devotee, after a devotee, death is not like that. And then the Kasur, who was a great cheetah girl, he disguised himself as a donkey. And he was killed by Balaram, because Balaram represents the Guru. Krishna cannot dispel the duplicity in the heart like Guru can do. Therefore, Krishna himself comes in the form of the Guru.
Thank you. Now, go on. इसी प्रकार से कृष्ण ने बाल्य लीलाओं में और विशेष करके ब्रज में जो जो लीलाएं की, किसी को मारा नहीं। जो अज्ञ व्यक्ति है वो समझते हैं कि मारा, उनका शरीर बदल दिया, उनके आत्मा के शरीर को प्रकट करके गोलोक वृंदावन में उनको धाम में माता की गति दे दी पूछना। और जो राक्षस थे जो उनके हाथों से मरे उनको मुक्ति दी, अब संसार में आना जाना उनका नहीं रहे। धनकासुर मैंने क्या, गधा डंकी। गधा कौन है? जो संसार में आते हैं और भगवान का भजन नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, जो ये नहीं समझते कि मैं उनका अंश हूं और भगवान को मानने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान को किसने देखा है ऐसा प्रश्न करेंगे। नहीं समझते कि सारा विश्व ब्रह्मांड का संचालन कौन कर रहा है। जब हम हवा को नहीं देखते तभी हवा है, आकाश को नहीं देखते तभी आकाश है, जीवात्मा को नहीं देखते हैं तभी है, परमात्मा सब जगह है और ये सारा विश्व का संचालन वही कर रहे हैं। मूर्ख लोग नहीं समझते हैं, इसलिए वो गधे के स्वरूप धर्मे नहीं ना। वो धर्म से भी वो पशुओं में भी गधे हैं, कुछ नहीं जानते। गधे का एक और निशाना है, एक और लक्षण है, गधा को यदि कसाई खन में लेकर के उसको मारना है और थोड़ा सा दे दो तो दो गधे झगड़े करते हैं घास के लिए, किंतु नहीं समझते कि ये दूसरे क्षण में हमको लेकर के आ हमारा वध कर। उसी प्रकार से जो लोग ये नहीं समझते आज न कल हमें जरूर जाना पड़ेगा, रुपया पैसा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। स्त्री पत्नी संसार के जितने रिलेशन वाले हैं कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। यहां तक कि संसार के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, सभी लोग मिल करके भी एक आदमी का, एक बुढ़ापे का एक क्षण भी कम नहीं कर सकते मृत्यु को। जो कुछ कमाया इस संसार में रह जाएगा। इस चीज को जो नहीं समझते हैं और भगवान का स्मरण नहीं करते, जो भगवान बड़ा दयालु है, एक बार उसका नाम लेने से ही संसार सागर को वो करते हैं। अजामिल जैसा दुराचार, भूल से उसने अनजान में नारायण नाम कह दिया, उसे उसकी गति हो गई। तो कौन ऐसा गधा है जो उस प्रभु का स्मरण नहीं करेगा इस जीवन में, आप प्रभु को नहीं मानेगा? केवल गधे जैसे लोग उनकी बुद्धि, इसकी भी शिक्षा। व्हाट आई टोल्ड यू सिस्टर,
kills the demons, but no, he never kills them. Simply he changes them from their mature bodies and gives them a position in his own realm. And those who are asuras, if they are personally killed by Krishna on hand, then they get mukti. That means again they don't come in a cycle of birth and death. So Dhenakasura means donkey. So donkey, he is very foolish. Those of us who don't chant the name of Bhagavan, Sri Krishna, or at least remember him, they are also like donkeys. They have forgotten that they are his eternal part and parcel. So they are so foolish, they think that seeing is believing. They think we cannot see Krishna, therefore we don't believe in him. But there are so many things that we cannot see but are fact. We cannot see the wind, we cannot see the sky. You cannot see the Atma, you cannot see the Paramatma, even though it is all pervading. But still such things exist. So donkey also has one very special other symptom. If you take donkeys or goats, if you take them to the butcher, what do they do? The butcher gives them some grass and the two donkeys are fighting over the grass. They cannot understand, and the next second they're about to get killed and chopped up. So we are like, first few things like that is like a donkey. So definitely either today, tomorrow, or the next day, we must also go. So when we go, everything we own will stay here. Our wives, our bank accounts, everything will stay and we will go empty handed. Even if all the doctors, Ayurvedic doctors, scientists, medical experts, if they all come together combined, they cannot give a person even 1% at the time of death. So Krishna is so kind and so merciful, if anyone takes his name, even once, they can cross the cycle of birth and death. Like Ajamil, he chanted the name of Narayan unknowingly, and look at his great destination.
Oh, you told? एक यज्ञ पत्नी थी, ब्राह्मणों माथुर ब्राह्मणों की पत्नियां, ये कंस के लिए मथुरा और वृंदावन के बीच में अक्रूर घाट है, तो वहां वो यज्ञ कर रहे थे और उसी समय में कृष्ण और बलदेव गोचारण करते हैं वहां वहां पर पहुंचे। आज खुद से मैया ने समझा जो वो भांडीर में गए हैं, भांडीर बनना, इसलिए वहां पर उनका कलेवा भेज दिया। और यहाँ पर कोई फल नहीं, फूल नहीं, अशोक के केवल वृक्ष थे, कुछ नहीं खाने के लिए। बच्चों को भूख लगी, उन्होंने कहा कि हमारे आपने बहुत से दैत्यों को मार करके हमारा प्राण की रक्षा की, अब इस दैत्य से हमारा कैसे उद्धार होगा। कृष्ण बलदेव ने कहा, मेरे साथियों ग्वाल बालों, यहाँ पर ब्राह्मण लोग हैं मथुरा के, यज्ञ कर रहे हैं, और वो ऐसा यज्ञ है यज्ञ में भोजन दिया जा सकता है, यज्ञ समाप्त होने के पहले भी उसमें भोजन देने की विधि है। उनसे कहना जो कृष्ण बलराम आए हैं और वो भूखे हैं, वो लोग तुमको कुछ दे देंगे। कृष्ण की बात मान करके चले गए, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, और प्रणाम करके उन लोगों ने देख करके भी देखा नहीं, नन्ना जे कृष्ण और बलदेव जी यहाँ आए हैं, उनको भूख लगी है, आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मण हैं, बड़े उदार हैं और वेदों को जानने वाले हैं, तो इस यज्ञ में पूर्णाहुति न होने के पहले भी अन्न दान करने की विधि है, इसलिए आप कुछ थोड़ा सा भोजन करने के लिए, भोजन देने के लिए कृपा करें। दो बार चार बार कहा, किनको उन लोगों ने सुना नहीं। कृष्ण बलदेव कौन वो समझते थे जो ग्वाला का कोई मूर्ख लड़का होगा। ब्राह्मणों में भी ये गड़बड़ी रहती है, दूसरे जाति के लोगों में श्रद्धा रहती है, वो समझ जाते हैं ब्राह्मण में कोई कोई ब्राह्मण ऐसे हो, बस रोते हुए निकल वहां आए। कृष्ण के जब अब हम नहीं कहीं जाएंगे, मैं कहा देखो भिखारी आदमी को बिगड़ना नहीं चाहिए, सहन बहुत सहनशीलता होनी चाहिए। अरे भाई दस आदमी देता है बड़े प्रेम से, एक आदमी नहीं दिया तो उसके लिए क्या है। उनके घर में पत्नियों के पास में जाओ, वो जरूर देंगे, और हम नहीं जाते। अब उन्होंने कहा अच्छा जाओ, तो जाओ भेजा। वो घर में गए और वो रसोई रसोई बना करके तैयार रखी थी, वो यज्ञशाला में ले जाने वाली, इसलिए थाल में पूरी पकवान और सब व्यंजन, खीर लड्डू और सब चीजों को परोस करके वो जा रही थी यज्ञशाला में अपने पतियों के पास। किंतु ये दोनों बच्चे, ये सब कुछ लड़के सखा लोग वहां पर गए ग्वाल। उस समय इनकी उम्र कितनी होगी, 12-13 वर्ष की भी नहीं होगी, 10-12 वर्ष। कृष्ण की उम्र अभी 10 वर्ष से कम की थी। तो वहां पर पहुंचे और ब्राह्मणियों को प्रणाम किया और बोले जी कृष्ण और बलदेव यहाँ आए हैं, उन्होंने कहा कि हमको भूख लगी है, तो आप लोग कुछ भिक्षान्न दे दे तो हम ले खिलाए। बस सुनते ही बात, जितना अपनी यज्ञशाला में जा रहे थे सबके सब, और कितनी संख्या में 20-25-30-40-50 वो अपने पतियों के पास यज्ञशाला में न जा करके पहुंच गई कृष्ण और बलदेव, और देखते ही रह गए। कृष्ण का रूप कैसा था, हिरण्य परिधि वनमाल्य बरह बढ़ा परिपुच्छ, बड़ा सुंदर मोर मुकुट, अभी किशोर उम्र, अभी 10 वर्ष माने अब किशोर अवस्था झांक रही है, इसको वयस संधि कहते हैं। शरीर में अद्भुत कांति दोनों की, बैंड बजा रहे हैं और कानों में कुंडल झलक रहे हैं, उनके श्याम अंग पर पीत वसन ऐसा लग रहा है मानो मेघों में बिजली कड़क रही थी। बस दे करके अपना सर्वस्व उनके चरणों में दे दिया, ये सशक्त दे थाल तो अर्पण कर ही दिया। थाल उनके सामने रख करके मानो कृष्ण ने सब कुछ उनके दिल को मन को हृदय को सब चोरी कर दिया। कृष्ण ने कहा जे उनको माताओं आप लोग अब घर पधारिए, मैं ग्रहण कर लिया आपका, ये आपका जीवन सार्थक हो गया मुझे देखकर, अब आप लोग घर में जाइए अपने पतियों के पास। मेरे जब हम घर नहीं जाएंगी, हमने अपना सर्वस्व आपके चरणों में दे दिया और उनकी बात न मान करके उनका विरोध करके हम लोग आई हैं, इसलिए घर में अब हम लोगों को नहीं रखेंगे, हमारी बात नहीं मान करके तुम लोग आए। बड़े निष्ठुर होते हैं ये। तो जब कहा उन लोगों ने, तब कृष्ण ने कहा देखो घर जाओ, आज तुम्हारे पति लोग तुम्हारे आगमन के लिए रास्ते में खड़े हैं, अब वो समझेंगे और तुम्हारे चरण की धूलि की वंदना करेंगे और तुम लोगों से क्षमा मांगेंगे। जाओ, अपनी माया से उनको मोहित कर दिया। गोपियों से भी ऐसा कहा था, जब उन्होंने बंसी बजाई बंसी बट पर वृंदावन में, लाखों गोपियां मानो उनके हृदय को बंसी की ध्वनि से चुरा लिया और वो पीछे पीछे दौड़ी। अजगमु अन्नो अन्नम अलक्षिता उठते, अलक्षित रूप में एक एक गोपी घर से निकली, कोई किसी को देख रही है कि नहीं वो खुद ही चली, कोई रोटी बना रही थी रोटी तवे पर जलती रही, दलिया बन रहा था दलिया वो चूल्हे पर लगा रह गया, कोई पति की सेवा करती थी उसी में छोड़ दिया, कोई आंख में आंजन कर रही थी एक में किया दूसरा बाकी था उसको वैसे ही चूल, आभूषण उलट पुलट करके धारण किया, गले का हार पैर में लगा लिया और पैर का गले में लगा लिया, उल्टा बेस तेज कर करके वहां पर पहुंच। जब पहुंची तो कृष्ण ने कहा ओ बहुत अच्छा हुआ, मैं भगवान हूं ना इसलिए तुम लोग दर्शन करने के लिए, अब तुम लोग लड़ दो। पति यदि अंधा लंगड़ा लूला कोढ़ी दरिद्र भी हो तो हमारी भारतीय संस्कृति की पत्नियां लड़कियां कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ती, इसलिए तुम लोग घर में जाओ। कृष्ण ने बहुत उनको समझाया किंतु वो मानी नहीं। उन्होंने एक प्रश्न किया, हमने सुना है कि आपने आप तो भगवान हैं ने कह रहे हैं ये भगवान हूं, तो गीता में तो भगवान ने कहा है और सब जगह में कहा है कि गुरु और कृष्ण रहे तो किसको प्रणाम करे, आगे आगे गुरु की पूजा करके भगवान की पूजा करो। आप इतना सुंदर उपदेश हमें दे रहे हैं पापी व्रत धर्म का, तो आप तो हमारे गुरु है, इसलिए पहले आपकी गुरु पूजा करके तब अपने पतियों को पूजा हम करेंगे, और नहीं करते हैं तो आपको दोष लगेगा, दोष लगेगा। और कृष्ण को निरुत्तर कर दिया, कृष्ण कुछ बोल नहीं सके। अंत में उनके साथ में रास इत्यादि हुआ तो इनको तो नहीं लौट, इनको तो लौट नहीं लौटाया, किंतु ब्राह्मण पत्नियों को किस लिए नहीं लौटाया, किस लिए लौटा दी कि वो ब्राह्मण की पत्नियां थी, ये तो ग्वालिनी थी, इनका संबंध हो सकता है। ब्राह्मण की पत्नियों को अपनी मैया जैसा कृष्ण, धर्म का कभी व्यतिक्रम नहीं किया, सबको यथा योग्य सम्मान देकर के धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए आए। जदा जदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय। इसलिए उनको माया से मोहित करके ब्राह्मण पत्नियों को और किसी भी जाति के लड़कियों को वो ग्रहण नहीं करें, और गोपियां जो थी उनकी स्वरूप शक्ति हैं, ये मत सोचो जैसे वो किसी गोप की स्त्री थी पराई, नहीं, अपनी हलादनी शक्ति कृष्ण से अभिन्न है। लीला करने के लिए मालूम होता है जैसे राधा जी बने हैं कृष्ण ही और गोपी, इसलिए उनके साथ में तो राष्ट्र किया और दूसरों के साथ में। द्वारका गए, उनकी 16,000 रानियां थी, राष्ट्र नहीं किया वहां, नहीं करेंगे, ब्रज में ही करेंगे। इसलिए ब्राह्मण पत्नियों को सम्मान देते हैं, उनको लौटा है। जब दूसरे जन्म में गोपी होकर के आएगी तुम लोग, और गोपी होने के बाद में तब तुम लोग को ग्रहण करता है। इस जन्म में ब्राह्मणी से तो दूसरे जन्म में गोपी के घर में आई, तपस्या की वही चीर घाट पर, जो वो करने वाली थी, वो कठोर व्रत करने वाली थी, वो थी। फिर उनको ग्रहण, तो कृष्ण की लीलाएं बड़ी गहन है, उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। विशेष स्मार्ट ब्राह्मण होते हैं वो लोग समझते हैं कि हम लोग वेद को पढ़े हुए जानते हैं, किंतु जब वो घर में लौटी जगह पत्नियां, उनके पति लोग रास्ते में आकर के खड़े हुए, ओ ये धन्य हमारी पत्नियां हैं, वेदों का अध्ययन नहीं किया, हम लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, हमारा 3 जन्म है, शौक्र सावित्र और दक्ष। पहला जन्म माता पिता से, दूसरा पुरोहित से उपवीत के समय, और तीसरा जन्म होता है सदगुरु से पारमार्थिक दीक्षा। हम लोगों को ये सभी प्राप्त है और भगवान को नहीं पहचान सके हम, और ये कुछ नहीं जानती है, सब समय अपवित्र रहने वाली, और हमारी बात भी नहीं मांग करके भगवान को थाल भर करके ले आई और उनको तृप्त कर दिया, बस उनके चरणों में गिर गए, बोले ये तुम लोग धन्य हो। धिक्कार है हमें विद्या का, धिक्कार है ब्राह्मण होने का, और धिक्कार है हमारी जाति। ब्राह्मणों में देखा जाता है एक आदमी मर गया पापी, उनको दान दो वो ले लेंगे, तो ये पाप जाएगा कहां, साधन भजन तो है नहीं। वैष्णव लोग नहीं ऐसा करते और दूसरे जाति के लोग नहीं करते, विशेष करके एक जाति ही ब्राह्मण में होती है जो यही काम करते हैं, बड़ा कठिन। इसलिए ब्रह्म जन्म लेकर के क्या हो गया ब्राह्मणों का, यदि भगवान का भजन नहीं किया, और यदि भगवान का जन्म हो गया तो सबरी जैसा जन्म भी बहुत उत्तम है। इसलिए वही सौभाग्यवान है, वही धन्य है जो भगवान का भजन करते, भगवान का नाम करते। वो गृहस्थ भी बहुत ऊंचा है जो गृहस्थी में रह करके भी भगवान का हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, किसी को धोखा नहीं देता, जो कुछ बन पड़ता है दूसरों को दे देता है और भगवान का स्मरण।
So all the brahmanas of Mathura had gone to Akuruga, which is the border between Bengal and Mathura. There they were performing their different types of yoga. At that time, Haryasota had thought that Krishna and Balaram and all the sakyas had gone to Pandirava. But in fact, instead of going there, they had gone to Akuruga. So all the
मुझे सीढ़ी चढ़ने में भी तकलीफ
है, हम नीचे आ जाए
जाओ पकड़ कर चले
गिर न जाए।
So Krishna sent up. So they went to the brahmanas, and I said, they get pronounced as Brahmanas. And I ask, oh my dear learned Brahmanas, you know all the Vedas, you know all types of rules and regulations. Therefore, the rules and regulations.
Why not speaking? Who is controlling? Are Kenyan? Vector? एक धोती देना पड़ेगा, ये कपड़ा देना पड़ेगा जो गुलाब का माला देगा, नहीं तो ये बदरंग कर देता है, नहीं तो सफेद वाला फूल का ले आ जाओ।
जा रही
है, कहाँ जाएगी?
देवी जी की माँ है,
देवी जी की माँ है। हाँ हाँ हाँ, जाओ
आशीर्वाद।
So, oh my dear Brahmanas, the niti or the rules and regulations is before one performs a yajna, one should give food grains in charity. So we are here to take your food grains. So the boys asked the Brahmanas 4 or 6 times. But despite looking towards the boys, they did not hear, they completely ignored the boys. Because Brahmins have sometimes a little fault. They are very proud. Therefore, very hard for Brahmins to understand the Supreme Lord. But other castes can understand without difficulty. So, the boys asked 4 or 6 times, but the Brahmins would not give anything. So, empty-handed, they returned to Krishna. So, Krishna said, this is the rules of begging. If 10 people give, and one person doesn't give, then don't cry for that thing. So Krishna said, you should go again, but this time go to the wives of the Brahmins. The wives were that time preparing many, many preparations in their house for the yajna. That time Krishna was at Vaisampi. That's just at the junction between just when he's turning into Kishoravastar. So the boys went again. And they asked the wives of the Brahmins that Krishna and Balaram are nearby. Please, and they are very hungry, you can give them something to eat. So the Brahmins, wives, Yajnapatis became very happy. Immediately they collected everything that they had cooked in preparation for the yajna, maybe 50 preparations. And they went to see Krishna. That time, how was Krishna? He was looking at the age of 10 years old. He was wearing a very beautiful peacock feather on his head. His body last was very attractive. On his lotus lips was resting flute, and on his was resting a hand on the shoulder of a friend. His kumbhas were very beautiful. And he was wearing pitamba. In fact, it looked like Krishna's body was a fresh rain cloud, and the pitamba was a streak of lightning across that cloud. So the Yajnapatnis very happily gave everything to Krishna, everything they possessed. And Krishna also stole everything they had, their body, their minds, their words. Krishna stole everything. Then Krishna said, oh my dear mothers, I accept everything you have given me, now you can return home. Your lives are successful. But the Yajnapatni said, no. We are yours. We cannot return because we have left our houses. And our husbands are very cruel-hearted. Therefore, they will never let us return again. So Krishna said, don't worry. I promise you that when you return from here, your husbands will have changed. And they are now standing on the pathway to offer aarti to you and to give prayers to your lotus feet. So the same Krishna, when he played his flute at Bansipat, he attracted thousands and thousands of gopis. When that flute sound entered the ears of the gopis, they became mad and left everything they had. Some were cooking. Some were serving their husbands. Some were decorating themselves. But when they heard the sound of Krishna's flute, they ran there. In fact, they were so much absorbed in Krishna, one gopi did not know that the other gopi was running right next to her. They were so absorbed. Some gopis had only put mascara on one eye. Some had decorated themselves. They put their feet, ankle bells around their neck and their necklaces around their feet. Some have put their clothes on back to front. Their ornaments were scattered, and when they heard Krishna's food in that condition, they ran. So when the gopis came to Krishna, Krishna said, "Oh gopis, have you come here to see the forest? So now that you've seen the forest, I think that you should return home. Because for a woman, the highest thing she can do in this world is to be chaste to her husband. So even if her husband is deformed, poor, maimed, blind, the wife should never leave him. This is the essence of our Indian culture." So when the gopis heard these words of Krishna, Krishna ordered them to return home. Then the gopis said very cleverly, "Oh Krishna, we have heard you are like Bhagavan. So you are giving very nice instructions to us, that means you are like a guru. The Shastra says, Prakasamanti Guru Pujatatastheva Mahachana. All the Shastras say that first, before one serves even Bhagavan, one should offer first pranam and your service to the guru. Therefore we will serve you. And if you do not accept our service, then this is your fault." So when Krishna heard the arguments of the gopis, Krishna became silent, he could not reply. But when the wives of the brahmanas returned home, they returned home. Why? Because the wives of the brahmanas are to Krishna like mothers. Therefore Krishna, yada yada hi dharmasya brahmi bharata, abhyutanama dharmasya karamadam sujanyamam. So Krishna came here, it says, to establish dharma. So then how Krishna will perform a religious activity? It's not possible. Krishna only accepts ladies from gopi caste. He never accepts from any other caste. So those yagyapatis were not gopis, therefore they did not have that type of relationship of being in the same jati or caste. Don't think the gopis are ladies or ordinary girls, no. They are Krishna's sarup shakti. They are no different from Krishna. In one sense, we can say Krishna has manifested himself as Radharani and the different gopis. Only with the gopis, Krishna performs for us. In Dwarka, Krishna was there with 16,108 queens. But in Dwarka, in your next birth, you can take birth of the woman's gopis, then it's possible for you to attain him. So the gopi, those yagyapatis, took birth, and Krishna gave them mercy at Chirgat when they were performing the worship of Katiyani. Krishna stole all their clothes and gave them that type of attraction. So next incarnation Krishna gave them that mercy to the yagyapatis. So Krishna Lila is very, very hard to understand. Whom I say very respectfully, my dear Smarta Brahmanas. Oh, sorry, the Smarta Brahmanas, when their wives returned, they began to lament, "Oh alas, we are most unfortunate. Even though we have taken three births, one birth is by Simon, one birth is by Ubhavitra, Brahman Tread, and the third birth is Paramahansa Diksha by Sadguru. So we have taken these three births, we have studied all the Vedas, we are most unfortunate. Because when Krishna came, we could not understand it. But how astonishing it is that our wives were always impure, women, less educated. They are disqualified in every way. But still, they could understand Krishna, and they completely satisfied him." And the Brahmanas began to lament, "Oh, fie upon our birth, fie upon our knowledge, fie upon our position." So, Brahmanas, afraid to take donations from people because afraid of sin. But Vaishnava is not afraid. Only Vaishnava is merciful enough to take their donation and to take the sins of those persons. So Vaishnavas are very kind. Therefore, Guru Maharaj is saying with respect, "Oh my dear Brahmanas, if you don't worship Krishna, then your high birth is completely useless. Therefore, start to take the name."
ब्राह्मण पत्नी के की देख रहे आत्मा के माय मतिन तू शरीर के तो माय मतिन जान दे ब्राह्मण के हमारा जो तुम मेरा वो क्या हमारा माँ बोल हाँ वैसा ही करेगा दिखलाने के लिए वो माँ ही है ब्राह्मण की पत्नियों को दूसरे सभी लोग मैया कहते अरे आप उनकी बेटी को भी माँ कहते हैं तो फिर और कुछ। देखो पुतना कृष्ण को मारने के लिए गई, मैया का वेश बनाया कपटी घोर और उसको माता की गति दे दी। अजामिल महादुराचारी मरते समय अपने बेटे के लिए नाम किया और उसको मुक्ति दे दी, वैकुंठ लोक में चला गया। ऐसे दयालु यदि कोई श्रद्धा से उनका नाम करेगा तो क्या होगा। किन्तु भागवत में ऐसा कहा, श्रद्धा से यदि करेगा तो कृष्ण क्या देंगे, ब्रह्मा कहते मैं नहीं जानता इसका फल क्या देंगे। सतुज में मैया के भाव से यदि कोई कर रहा है, मित्र के नाते कर रहा है, गोपियों के अनुगत्य में प्राण प्रियतम करते थे गोपाल मंत्र से उनका भजन करता है, कृष्ण क्या देंगे। ये बड़ी विचित्र बात है। इसलिए आज बहुत से लोग घर लौट रहे हैं, किंतु इस चीज को ले जाना, भगवान का नाम श्रद्धा से करना, बड़े प्रीति से करना, विश्वास के साथ में करना जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर, हमारे जन्म मरण का जितना कष्ट है वो सबको दूर जरूर करे। ये चीज को दृढ़ विश्वास के साथ में ले जाओ और घर पर हरिनाम करो, भगवान का भजन करो, यदि घर में ठाकुर जी है तो उसका पूजन करो श्रद्धा विश्वास के साथ में, जरूर सुंदर गति हो। कपटता मत करो, संसारी कोई चीज उनसे मत मारो, पता ही तो
How much merciful is Krishna? Putana went to kill him. What did Krishna do? He gave her the position of mother. As you know, Chandra died neglectfully, but in the end he attained the position of Vaikuntha. And first he attained Mukti, then he attained Vaikuntha. So, can we imagine the result if we chant the name with faith? What won't Krishna give us? If such result was achieved by them, then if we chant in the mood of being friends of Krishna, or chant under the anugrahya of the gopis, or we chant Gopa mantra, then the fruit we can get is most astonishing. So now many of us are returning to our homes, so I am requesting you, don't leave empty-handed. You should take with you the holy name and chant with great faith. If you have Thakurji in your home, then worship Thakurji with great Shraddha. The name is so powerful, it will destroy all your problems. But do not be duplicious. Do not try to enjoy anything from this material world.
बधाई का कीर्तन एक कर सहज सब लोग का। कृष्ण बलदेव ने कहा, मेरे साथियों ग्वाल बालों, यहां पर ब्राह्मण लोग हैं मथुरा के, यज्ञ कर रहे हैं और वो ऐसा यज्ञ है यज्ञ में भोजन दिया जा सकता, यज्ञ समाप्त होने के पहले भी उसमें भोजन देने की विधि है। उनसे कहना जो कृष्ण बलराम आए हैं और वो भूखे हैं, वो लोग तुमको कुछ दे देंगे। कृष्ण की बात मान करके चले गए, ब्राह्मण को प्रणाम किया और प्रणाम करके उन लोगों ने देख करके भी देखा नहीं, नन्ना जी कृष्ण और बलदेव जी यहाँ आए हैं, उनको भूख लगी है, आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मण हैं, बड़े उदार हैं और वेदों को जानने वाले हैं, तो इस यज्ञ में पूर्णाहुति न होने के पहले भी अन्न दान करने की विधि है, इसलिए आप कुछ थोड़ा सा भोजन करने के लिए, भोजन देने के लिए कृपा करें। दो बार चार बार कहा किंतु उन लोगों ने सुना नहीं। कृष्ण बलदेव कौन, वो समझते थे जे ग्वाला का कोई मूर्ख लड़का होगा। ब्राह्मणों में भी ये गड़बड़ी रहती है,
दूसरे जाति के लोगों में श्रद्धा रहती है, वो समझ जाते हैं ब्राह्मण में कोई कोई ब्राह्मण ऐसे हो, बस रोते हुए निकल वहां आए कृष्ण के जब अब हम नहीं कहीं जाएंगे। मैं कहा देखो भिखारी आदमी को बिगड़ना नहीं चाहिए, सहन बहुत सहनशीलता होनी चाहिए। अरे भाई 10 आदमी देता है बड़े प्रेम से, एक आदमी नहीं दिया तो उसके लिए क्या है। उनके घर में पत्नियों के पास में जाओ वो जरूर देंगे, अरे हम नहीं जाते। अब उन्होंने कहा अच्छा जाओ तो जाओ, भेजा वो घर में गए और वो रसोई रसोई बना करके तैयार रखी थी वो यज्ञशाला में ले जाने वाली, इसलिए थाल में पूरी पकवान और सब व्यंजन खीर लड्डू और सब चीजों को परोस करके वो जा रही थी यज्ञशाला में अपने पतियों के पास। किंतु ये दोनों बच्चे ये सब कुछ लड़के सखा लोग वहां पर गए ग्वाल। उस समय इनकी उम्र कितनी होगी, 12-13 वर्ष की भी नहीं होगी, 10-12 वर्ष। कृष्ण की उम्र अभी 10 वर्ष से कम की थी। तो वहां पर पहुंचे और ब्राह्मणियों को प्रणाम किया और बोले जी कृष्ण और बलदेव यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा जी हमको भूख लगी है तो आप लोग कुछ भिक्षान्न दे दे तो हम ले खिला। बस सुनते ही बात जितना अपनी यज्ञशाला में जा रहे थे सबके सब, और कितनी संख्या में 20-25-30-40-50 वो अपने पतियों के पास यज्ञशाला में न जा करके पहुंच गई कृष्ण और बलदेव और देखते ही रह गए। कृष्ण का रूप कैसा था, हिरण्य परिधि वनमाल्य बरह बढ़ा अरिपुच्छ, बड़ा सुंदर मोर मुकुट, अभी किशोर उम्र, अभी 10 वर्ष माने अब किशोर अवस्था झांक रही है, इसको वयस संधि कहते हैं। शरीर में अद्भुत कांति दोनों की, वेणु बजा रहे हैं और कानों में कुंडल झलक रहे हैं, उनके श्याम अंग पर पीत वसन ऐसा लग रहा है मानो मेघों में बिजली कड़क रही थी। बस दे करके अपना सर्वस्व उनके चरणों में दे दिया, ये सशक्त दे थाल तो अर्पण कर ही दिया, थाल उनके सामने रख करके मानो कृष्ण ने सब कुछ उनके दिल को मन को हृदय को सब चोरी कर दिया। कृष्ण ने कहा जे उनको माताओं आप लोग अब घर पधारिए, मैं ग्रहण कर लिया आपका, ये आपका जीवन सार्थक हुआ मुझे देखकर, अब आप लोग घर में जाइए अपने पतियों के पास। मैंने कहा जब हम घर नहीं जाएंगी, हमने अपना सर्वस्व आपके चरणों में दे दिया और उनकी बात न मान करके उनका विरोध करके हम लोग आई हैं, इसलिए घर में अब हम लोगों को नहीं रखेंगे, हमारी बात नहीं मान करके तुम लोग बड़े निष्ठुर होते हैं ये। तो जब कहा उन लोगों ने तो कृष्ण ने कहा देखो घर जाओ और तुम्हारे पति लोग तुम्हारे आगमन के लिए रास्ते में खड़े हैं, अब वो समझेंगे और तुम्हारे चरण की धूलि की वंदना करेंगे और तुम लोग से क्षमा मांगेंगे, जाओ। अपनी माया से उनको मोहित कर दिया। गोपियों से भी ऐसा कहा था जब उन्होंने बंसी बजाई बंसी बट पर वृंदावन में लाखों गोपियां माने उनके हृदय को बंसी की ध्वनि से चुरा लिया और वो पीछे पीछे दौड़ी अजगमु अन्नो अन्नम अलक्षिता उठते अलक्षित रूप में एक एक गोपी घर से निकली, कोई किसी को देख रही है कि नहीं वो खुद ही चली, कोई रोटी बना रही थी रोटी तवे पर जलती रही, दलिया बन रहा था दलिया वो चूल्हे पर लगा रह गया, कोई पति की सेवा करती थी उसी में छोड़ दिया,
कोई आंख में आंजन कर रही थी, एक में किया, दूसरा बाकी था, उसको वैसे ही छू आभूषण उलट पुलट करके धारण किया, गले का हार पैर में लगा लिया और पैर का गले में लगा दिया, उल्टा बेस तेज कर करके वहां पर पहुंच। जब पहुंची तो कृष्ण ने कहा, ओ बहुत अच्छा हुआ, मैं भगवान हूं ना, इसलिए तुम लोग दर्शन करने के लिए, अब तुम लोग लड़ दो। पति यदि अंधा लंगड़ा लूला कोढ़ी दरिद्र भी हो, तो हमारी भारतीय संस्कृति की पत्नियां लड़कियां कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ती, इसलिए तुम लोग घर में जाओ। कृष्ण ने बहुत उनको समझाया किंतु वो मानी नहीं। उन्होंने एक प्रश्न किया, हमने सुना है कि आपने, आप तो भगवान है ने, कह रहे हैं ये भगवान हूं, तो गीता में तो भगवान ने कहा है और सब जगह में कहा है कि गुरु और कृष्ण रहे तो किसको प्रणाम करे आगे, आगे गुरु की पूजा करके भगवान की पूजा करो। आप इतना सुंदर उपदेश हमें दे रहे हैं पापी व्रत धर्म का, तो आप तो हमारे गुरु है, इसलिए पहले आपकी गुरु पूजा करके तब अपने पतियों को पूजा हम करेंगे, और नहीं करते हैं तो आपको दोष लगेगा, दोष लगेगा। और कृष्ण को निरुत्तर कर दिया, कृष्ण कुछ बोल नहीं सके। अंत में उनके साथ में रास इत्यादि हुआ, तो इनको तो नहीं लौट, इनको तो लौट नहीं लौटाया, किंतु ब्राह्मण पत्नियों को किस लिए नहीं लौटाया, किस लिए लौटा दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण की पत्नियां थी, ये तो ग्वालिनी थी, इनका संबंध हो सकता है। ब्राह्मण की पत्नियों को अपनी मैया जैसा कृष्ण, धर्म का कभी व्यतिक्रम नहीं किया, सबको यथा योग्य सम्मान दे करके धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए आए। जदा जदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदर्थमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय। इसलिए उनको माया से मोहित करके ब्राह्मण पत्नियों को और किसी भी जाति के लड़कियों को वो ग्रहण नहीं करें। और गोपियां जो थी उनकी स्वरूप शक्ति हैं, ये मत सोचो जैसे वो किसी गोप की स्त्री थी पराई, नहीं, अपनी हलादनी शक्ति कृष्ण से अभिन्न है। लीला करने के लिए मालूम होता है जैसे राधा जी बने हैं कृष्ण ही और गोपी, इसलिए उनके साथ में तो रास किया और दूसरों के साथ में। द्वारका गए, उनकी 16,000 रानियां थी, रास नहीं किया वहां, नहीं करेंगे, ब्रज में ही करेंगे। इसलिए ब्राह्मण पत्नियों को सम्मान देते हैं, उनको लौटा है। जाओ दूसरे जन्म में गोपी होकर के आएगी तुम लोग, और गोपी होने के बाद में तब तुम लोगों को ग्रहण करता है, इस जन्म में ब्राह्मणी से। तो दूसरे जन्म में गोपी के घर में आई, तपस्या की, वही चीर घाट पर जो तप वो करने वाली थी, वो कठोर व्रत करने वाली थी, वो थी, फिर उनको ग्रहण। तो कृष्ण की लीलाएं बड़ी गहन है, उनको समझ पाना बड़ा कठिन है, विशेष स्मार्ट ब्राह्मण होते हैं वो लोग समझते हैं कि हम लोग वेद को पढ़े हुए जानते हैं, किंतु जब वो घर में लौटी जगह पत्नियां, उनके पति लोग रास्ते में आकर के खड़े हुए, ओ ये धन्य हमारी पत्नियां हैं, वेदों का अध्ययन नहीं किया, हम लोग वेदों का अध्ययन करते, हमारा 3 जन्म है, शौक्र सावित्र और दक्ष, पहला जन्म माता पिता से, दूसरा पुरोहित से उपवीत के समय, और तीसरा जन्म होता है सदगुरु से पारमार्थिक दीक्षा। हम लोगों को ये सभी प्राप्त है और भगवान को नहीं पहचान सके हम, और ये कुछ नहीं जानती है, सब समय अपवित्र रहने वाली और हमारी बात भी नहीं मांग करके भगवान को थाल भर करके ले आई और उनको तृप्त कर दिया। बस उनके चरणों में गिर गए, बोले ये तुम लोग धन्य हो, धिक्कार है हमें विद्या का, धिक्कार है ब्राह्मण होने का और धिक्कार है हमारी जाति। ब्राह्मणों में देखा जाता है एक आदमी मर गया पापी, उनको दान दो वो ले लेंगे, तो ये पाप जाएगा कहां, साधन भजन तो है नहीं। वैष्णव लोग नहीं ऐसा करते और दूसरे जाति के लोग नहीं करते, विशेष करके जाति ही ब्राह्मण में होती है जो यही काम करते हैं, बड़ा कठिन। इसलिए ब्रह्म जन्म लेकर के क्या हो गया ब्राह्मणों का, यदि भगवान का भजन नहीं किया, और यदि भगवान का जन्म हो गया तो सबरी जैसा जन्म भी बहुत उत्तम है, इसलिए वही सौभाग्यवान है, वही धन्य है जो भगवान का भजन करते, भगवान का नाम करते। वो गृहस्थ भी बहुत ऊंचा है जो गृहस्थ में रह करके भी भगवान का हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, किसी को धोखा नहीं देता, जो कुछ बन पड़ता है दूसरों को दे देता है और भगवान का स्मरण।
So all the brahmanas of Mathura had gone to Akuruga, which is the border between Vrindavan and Mathura. There they were performing the different types of yoga. At that time, Pariyasara had thought that Krishna and Balarama and all the sakyas had gone to Pandiravan. But in fact, instead of going there, they had gone to Akuruga. So all the prasad that Pariyasara sent ended for the Pandiravan, the boys ended up in Akuruga. They were already hungry. So the boys said to me, there is a very ferocious demon called hunger. If you can kill him, he will be able to eat.
सीढ़ी चढ़ने में भी तकलीफ है,
हाँ हम नीचे आ जाए,
जाओ पकड़ करके ले जाओ, गिर ना जाए।
सो कृष्ण सेंट सो दे वेंट टू द ब्राह्मणस एंड आई सेड they gave pranam to those brahmanas. And I asked, oh, my dear learned brahmanas, you know all the Vedas, you know all types of rules and regulations. Therefore, the rules and regulations... The...
Why not he speaking? Who is controlling? Hare Kenyan. एक धोती देना पड़ेगा, ये कपड़ा देना पड़ेगा जो गुलाब का माला देगा, नहीं तो ये बदरंग कर देता है, नहीं तो सफेद वाला फूल का ले आ जाओ। जा रही हूँ, कहाँ जाएगी,
देवी जी की माँ है ना,
देवी जी की माँ है ना, हाँ 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 और जाओ।
So, oh my dear brahmanas, the niti or the rules and regulations is before one performs a yajna, one should give food grains in charity. So we are here to take your food grains. So the boys ask the brahmanas 4 or 6 times. But despite looking towards the boys, they did not hear, they completely ignored the boys. Because brahmanas have sometimes a little fault. They are very proud. Therefore, very hard for brahmanas to understand the Supreme Lord. But other castes can understand without difficulty. So, the boys asked 4 or 6 times, but the brahmanas would not give anything. So, empty-handed, they returned to Krishna. So, Krishna said, this is the rules of begging. If 10 people give, and one person doesn't give, then don't cry for that thing. So Krishna said you should go again, but this time go to the wives of the Brahmins. The wives were that time preparing many, many preparations in their house for the yajna. That time Krishna was at Vaisampi. That's just at the junction between just when he's turning into Kishoravastar. So the boys went again and they asked the wives of the Brahmins that Krishna and Balaram are nearby. Please, and they are very hungry, you can give them something to eat. So the Brahmins, wives, Yajnapatnis became very happy. Immediately they collected everything that they cooked in preparation for the yajna, maybe 50 preparations. And they went to see Krishna. That time, how was Krishna? He was looking at the age of 10 years old. He was wearing a very beautiful peacock feather on his head. His bodily lustre was very attractive. On his lotus lips was resting flute, and on his was resting a hand on the shoulder of a friend. His earrings, his kundals were very beautiful. And he was wearing pitamba. In fact, it looked like Krishna's body was a fresh rain cloud, and the pitamba was a streak of lightning across that cloud. So the Yajnapatnis very happily gave everything to Krishna, everything they possessed. And Krishna also stole everything they had, their body, their minds, their words. Krishna stole everything. Then Krishna said, oh, my dear mothers, I accept everything you have given me. Now you can return home. Your lives are successful. But the Yajnapatni said, no. We are yours. We cannot return because we have left our houses and our husbands are very cruel-hearted. Therefore, they will never let us return again. So Krishna said, don't worry. I promise you that when you return from here, your husbands will have changed. And they are now standing on the pathway to offer aarti to you and to give prayers to your lotus feet. So the same Krishna, when he played his flute at Vamsipat, he attracted thousands and thousands of gopis. When that flute sound entered the ears of the gopis, they became mad and left everything they had. Some were cooking, some were serving their husbands, some were decorating themselves, but when they heard the sound of Krishna's flute, they ran there. In fact, they were so much absorbed in Krishna, one gopi did not know that the other gopi was running right next to her. They were so absorbed. Some gopis had only put mascara on one eye. Some had decorated themselves. They put their feet, ankle bells around their neck and their necklaces around their feet. Some had put their clothes on back to front. Their ornaments were scattered. And when they heard Krishna's food in that condition, they ran. So when the gopis came to Krishna, Krishna said, oh gopis, have you come here to see the forest? So now that you've seen the forest, I think that you should return home. Because for a woman, the highest thing she can do in this world is to be chaste to her husband. So even if her husband is deformed, poor, lame, blind, the wife should never leave him. This is the essence of our Indian culture. So when the gopis heard these words of Krishna, Krishna ordered them to return home. Then the gopis said very cleverly, oh Krishna, we have heard you are like Bhagavan. So you are giving very nice instructions to us, that means you are like a guru. The Shastra says, Prakasamanti Guru Pujatas Cheva Mahakshana. All the Shastras say that first, before one serves even Bhagavan, one should offer first pranam and your service to the guru. Therefore, we will serve you. And if you don't accept our service, then this is your fault. So when Krishna heard the arguments of the gopis, Krishna became silent. He could not reply. But when the wives of the brahmanas returned home, they returned home. Why? Because the wives of the brahmanas are to Krishna like mothers. Therefore, Krishna, yada yada hi dhammasya brahmi bharata. So Krishna came here, says, to establish dharma. So then how Krishna will perform an irreligious activity? It's not possible. Krishna only accepts ladies from gopi caste. He never accepts from any other caste. So those Yajnapatnis were not gopis, therefore they did not have that type of relationship of being in the same jati or caste. Don't think the gopis are ladies or ordinary girls, no. They are Krishna's Swarup Shakti. They are no different from Krishna. In one sense, we can say Krishna has manifested himself as Radharani and the different gopis. Only with the gopis, Krishna performs ras. In Dwarka, Krishna was there with 16,108 queens, but in Dwarka, Krishna, that's good. In your next birth, you can take birth of the woman's gopis, then it's possible for you to attain him. So the gopis, those yagapatis, took birth, and Krishna gave them mercy at Chirgat when they were performing the worship of Katyayani. Krishna stole all their clothes and gave them that type of attraction. So next incarnation Krishna gave them that mercy to the yagapatis. So Krishna Lila is very, very hard to understand. From my saying very respectfully, my dear Smarta Brahmanas. Oh, so the Smarta Brahmanas, when their wives returned, they began to lament, oh alas, we are most unfortunate. Even though we have taken three births, one birth is by Simon, one birth is by Ubhavitra, Brahman Thread, and the third birth is Paramahamsa Diksha by Sadguru. So we have taken these three births, we have studied all the Vedas. We are most unfortunate, because when Krishna came, we could not understand it. But how astonishing it is that our wives were always impure, women, less educated, they are disqualified in every way, but still, they could understand Krishna, and they completely satisfied him. And the Brahmanas began to lament, oh, fie upon our birth, fie upon our knowledge, fie upon our position. So, Brahmanas, afraid to take donations from people because afraid of sin. But Vaishnava is not afraid. Only Vaishnava is merciful enough to take their donation and to take the sins of those persons. So Vaishnavas are very kind. Therefore, Guru Maharaj is saying with respect, oh my dear Brahmanas, if you don't worship Krishna, then your high birth is completely useless. Therefore, start to take the name.
ब्राह्मण पत्नी के की देख रहे आत्मा के माया मोतिन तू शरीर के तो माया मोतिन जान दे ब्राह्मण के हमारा जो तुम मेरा होके हमारा माँ बोल सकते हाँ वैसा ही करे दिखलाने के लिए वो माँ ही है ब्राह्मण की पत्नियों को दूसरे सभी लोग मैया कहते हैं अरे आप उनकी बेटी को भी माँ कहते हैं तो फिर और देखो पुतना कृष्ण को मारने के लिए गई मैया का वेश बनाया कपटी घोर और उसको माता की गति दे दी अजामिल महादुराचारी मरते समय अपने बेटे के लिए नाम किया और उसको मुक्ति दे दी वैकुंठ लोक में चला गया ऐसे दयालु यदि कोई श्रद्धा से उनका नाम करेगा तो क्या होगा किमु भागवत में ऐसा कहा श्रद्धा से यदि करेगा तो कृष्ण क्या देंगे ब्रह्मा कहते हैं मैं नहीं जानता इसका फल क्या देंगे सतुज में मैया के भाव से यदि कोई कर रहा है मित्र के नाते कर रहा है गोपियों के अनुगत्य में प्राण प्रियतम करते थे गोपाल मंत्र से उनका भजन करता है कृष्ण क्या देंगे बड़ी विचित्र बात इसलिए आज बहुत से लोग घर लौट रहे हैं किंतु इस चीज को ले जाना भगवान का नाम श्रद्धा से करना बड़े प्रीति से करना विश्वास के साथ में करना जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर हमारे जन्म मरण का जितना कष्ट है वो सबको दूर जरूर करें ये चीज को दृढ़ विश्वास के साथ में ले जाओ और घर पर हरिनाम करो भगवान का भजन करो यदि घर में ठाकुर जी है तो उसका पूजन करो श्रद्धा विश्वास के साथ में जरूर सुंदर गति हो कपटता मत करो संसारी कोई चीज उनसे मत मारो हटाई तो
How much merciful is Krishna? Putana went to kill him. What did Krishna do? He gave her the position of mother. Arjuna chanted the name neglectfully, but in the end he attained the position of Vaikuntha. First he attained Mukti, then he attained Vaikuntha. So, can we imagine the result if we chant the name with faith? What won't Krishna give us? If such a result was achieved by them, then if we chant in the mood of being friends of Krishna, or chant under the anugatha of the gopis, or we chant Gopa mantra, then the fruit we can get is most astonishing. So now many of us are returning to our homes, so I am requesting you, don't leave empty-handed. You should take with you the holy name and chant with great faith. If you have Thakurji in your home, then worship Thakurji with great Shraddha. The name is so powerful, it will destroy all your problems. But do not be duplicitous. Do not try to enjoy anything from this material world.
बधाई का कीर्तन एक कर सहज सब लोग का।